ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 12। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर् भवति कर्मजा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा।
पुट समथिंग इन द माफ कीजिए, ऐसा कुछ किचन में थूक लगा है कि सबको खांसी आनी शुरू हो गई, धसका लगना शुरू।
कांक्षन्तः चाहते हुए कर्मणां सकाम कर्मों की सिद्धिं सिद्धि यजन्ते यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं इस भौतिक जगत में देवताः देवतागण क्षिप्रम तुरंत ही निश्चय ही मानुषे मानव समाज में लोके इस संसार में सिद्धि ही सिद्धि सफलता भवती होती है कर्मजा सकाम कर्म से। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है। और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त हैं। वे कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिव विरंचिनूतम, तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। इन देवता यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीमद श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग वित ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान हैं। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनैतिक नेता की पूजा करके सरकार के मंत्री पद प्राप्त सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसीलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः शितः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। गणेश जी की पूजा का माहौल पूरे भोपाल शहर और पूरे भारत में वर्तमान समय में फैला हुआ है। उसके उपरांत नवरात्रि पूजा प्रारंभ होगी और हम देख सकते हैं कि नवरात्रि में, शिवरात्रि में, गणेश पूजा में कितने उत्साह से लोग भाग लेते हैं। नुक्कड़ नुक्कड़ पर गणेश जी की प्रतिमाओं को बिठाया गया है और कई दिन तक ये उत्सव चलेंगे। मार्केट्स में भीड़ लगी है गणेश जी की मूर्तियों को घर में लाने के लिए, और ऐसा पूरे भारत में हम देख सकते हैं कि जहाँ कहीं भी पूरे भारत में सभी जगह हम देख सकते हैं कि देवी देवताओं के मंदिर और उनके उत्सव में लोग सामान्य रूप से अधिक उत्साह से भाग लेते हैं। और जन्माष्टमी में जो लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन जन्माष्टमी में कृष्ण मंदिर जाते हैं और शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर और दुर्गा पूजा में दुर्गा को बैठाते हैं, गणेश जी के गणेश जी की पूजा करते हैं, उन लोगों के लिए कृष्ण भी एक देवता है। उनके लिए कृष्ण, शिव, दुर्गा, वो सब अलग 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 देव देवता हैं। हमें सबको प्रसन्न करना है, कोई नाराज नहीं होना चाहिए, जिससे काम बन जाए। तो इस भावना से वो पूजा करते हैं। तो यहाँ पर भगवान इस प्रकार की चेतना से जो पूजा की जाती है, यानी देवी देवताओं की पूजा, भले ही वो कृष्ण की पूजा तत्वतः नहीं जानते हुए करते हैं, मैंने नहीं, भले ही वो कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन क्योंकि तत्वतः जानते हुए नहीं करते हैं, इसलिए वो एक तरीके से देवी देवता की तरह से ही उनको पूजते हैं। वो नहीं जानते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और समान नहीं है। देवी देवता और भगवान में अंतर क्या है, सामान्यतः लोग स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं। तो इस तरह की सभी पूजा में लोग बहुत अधिक आकृष्ट होते हैं। ऐसा क्यों? और कृष्ण या विष्णु या राम, उनको सर्वोपरि और न केवल सर्वोपरि बल्कि अपने स्वामी की तरह समझ करके केवल उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करना निस्वार्थ भाव से, ऐसी पूजा, ऐसी सेवा, ऐसी वृत्ति, ऐसी समझ बहुत दुर्लभ है। ये आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। जहाँ पर भी शुद्ध भक्ति का प्रचार होगा, जहाँ पर कृष्ण की सेवा करनी है, पूजा करनी है केवल उनकी प्रसन्नता के लिए, बदले में कुछ नहीं, इस भौतिक जगत में हमें कुछ नहीं मांगना है, ऐसा प्रचार करने से बहुत कम लोग हैं जो आकृष्ट होते हैं। और जहां लोगों को उपाय मिलता है उनकी भौतिक कामनाओं को पूरा करने का, वहां भीड़ लगती है, वहां बड़ा उत्साह दिखता है। तो ये एक सामान्य ऑब्जर्वेशन है और भगवान आज इसका इस श्लोक में मूल कारण समझा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। तो भगवान कह रहे हैं, कामक्षम तक कर्मणाम सिद्धिम, जो लोग अपने भौतिक जगत को भोग करने के उद्देश्य से किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कामक्षमता कर्मणाम सिद्धिम, कर्म अर्थात इस भौतिक जगत में भोग करने के उद्देश्य से, अपनी स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से जो कार्य किए जाते हैं वो कर्म कहलाते हैं सामान्यतया। तो जो लोग ऐसे कर्मों में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि क्या है उन कर्मों की, कर्मफल जिससे हम
सुख इस भौतिक जगत में भौतिक सुख भोग सके।
तो जो कर्म फलों में कर्मों से कर्म फल प्राप्त करके भौतिक सुख भोगना चाहते हैं, यजंत यह देवताः, वे लोग देवताओं की पूजा उपासना करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं देवताओं की उपासना? क्योंकि ये श्रेयस्कर है उन लोगों के लिए। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवती कर्मजा, इस प्रकार ये जो कर्म का मार्ग है जिसमें देवी देवताओं की पूजा यज्ञ अनुष्ठान को बताया गया है, भगवद्गीता में बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है जगह जगह, इससे वो लोग ऐसा नहीं है जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं कर्म फलों में कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, वो मनमाने ढंग से कर रहे हैं। हालांकि आज कुछ ऐसा हो गया है, आज देवताओं की पूजा भी मनमाने ढंग से होने लगी है। आज वीजा विनायक, पासपोर्ट विनायक, अलग अलग प्रकार के विनायक और एक हंसी मजाक का तरीका लोगों ने बना दिया है। लेकिन हम यहाँ पर अभी फिलहाल अपने चर्चा को केवल जो शास्त्रोक्त देवी देवता पूजा है उस तक ही सीमित रखेंगे। तो वो पूजा मनगढ़ंत तरीके से नहीं है, वो शास्त्र में वर्णित है, वो स्वयं भगवान उसका वर्णन किए हैं भगवद्गीता में 3rd अध्याय में। तो उससे क्या होता है, जल्दी ही उनको अपने जो अभीष्ट हैं उनके भोग की सामग्री उनको प्राप्त होती है, बहुत जल्दी उनको भोग की सामग्री प्राप्त होती है, उनकी जो कामना है वो पूरी हो जाती है। तो ये श्लोक बताने से पहले जो पूरा इस अध्याय में भगवान विचार व्यक्त कर रहे हैं वो चल रहा है कि भगवान अर्जुन को मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। कर्म बंधन का मार्ग एक है और मुक्ति का मार्ग एक है, एक निवृत्ति है, एक प्रवृत्ति है और एक निवृत्ति है। प्रवृत्ति मार्ग जिसमें व्यक्ति भौतिक भोग कामना से प्रेरित होकर के शास्त्रों में दिए गए कर्म मार्ग यानी देवी देवताओं की उपासना का मार्ग चुनता है और उसका परिणाम होता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म और मरण के चक्र में आदमी पड़ा रहता है, ये प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। और निवृत्ति मार्ग है जिसमें व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर अपनी स्वाभाविक स्थिति अंततः भगवद्धाम भगवान के शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो ये दो मार्ग हैं मुख्यतया जो शास्त्रों में वर्णित हैं। क्योंकि शास्त्र में अलग अलग क्यों मार्ग वर्णित हैं, क्योंकि सभी लोग एक ही जैसी चेतना के नहीं हैं, सभी लोगों को क्रमिक मार्गदर्शन देने के लिए आवश्यक है उनकी समझ के अनुसार चेतना के अनुसार उनको ज्ञान दिया जा सके जिससे कि क्रमिक रूप से उनकी प्रगति हो सके धीरे धीरे। लेकिन अंततः उद्देश्य शास्त्रों का है कि हम सभी वापस अपनी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध कृष्ण प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर सकें, क्योंकि वही जीव को जीव का परम धर्म है, क्योंकि वही जीव को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है, पुष्ट कर सकता है। इसके नीचे कुछ भी ब्रह्मा पद की प्राप्ति भी जीव को संतुष्ट नहीं कर सकती है। तो इस भौतिक जगत में छोटे छोटे भोग की सामग्री प्राप्त करने के विषय में तो क्या कहा जाए। तो इस उद्देश्य से शास्त्रों में अलग अलग मार्ग बताए हैं। तो भगवान ने इस अध्याय के प्रारंभ में फिर कहा कि ये जो मार्ग है मुक्ति का, ये मैंने पहले विवस्वान को बताया था। तो तुरंत अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि आप तो मेरे समकक्ष हैं, कैसे मैं समझूं कि आपने ये विवस्वान जो कि करोड़ों करोड़ों साल पहले हुए हैं उनको आपने ये ज्ञान दिया। तो वहाँ पर भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न का फायदा उठाते हुए ये तथ्य बताया कि कैसे भगवान की जो स्थिति है और हम जीव सामान्य जीव अर्जुन जिसका यहाँ पर नेतृत्व कर रहा है उसमें क्या अंतर है, और कैसे भगवान की इस दिव्य स्थिति को जान लेने से हम मुक्ति के मार्ग में प्रशस्त होते हैं, और भगवान की स्थिति को तत्वता न जानने से
भोग का मार्ग, निवृत्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, सब मार्ग व्यर्थ है। इसलिए भगवान को तत्वता जानना मूल है, क्योंकि वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्या अहम वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं कि सभी वेदों के द्वारा अंततः मैं जानने योग्य हूँ। शास्त्रों का विषय भगवान है, क्योंकि क्योंकि भगवान सभी के मूल हैं। इसलिए भगवान को सही रूप से समझने से ही हम हर चीज को सही प्रकार से समझ सकते हैं। मूल को नहीं समझे बिना हम किसी भी चीज को सही प्रकार से नहीं समझ सकते हैं, और जब सही प्रकार से किसी चीज को समझेंगे नहीं तो फिर सही कार्य कैसे करेंगे, और अगर सही कार्य नहीं करेंगे तो सही परिणाम कैसे होगा। तो इसलिए भद्र हमारे जीवन में, किसी के भी जीवन में अगर शुभ है तो उसका मूल है कृष्ण को तत्वतः जानना। उसके बिना हम कुछ भी अच्छा हमारे साथ हो, मंगल हमारे जीवन में हो, हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान फिर इस अध्याय के प्रारंभ में बताए, जन्म कर्म चमे दिव्यम। हे अर्जुन, क्या तुम सोच रहे हो कि मैं और तुम समान स्तर पर हैं? तुम सामान्य जीव हो, लेकिन मैं सामान्य जीव नहीं हूँ। वास्तव में जीव हो तुम, शरीर नहीं हो। इससे तुम्हारे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, मेरे भी बहुत, मैं भी बहुत बार जन्म ले चुका हूँ, हालांकि मैं अजन्मा हूँ। और जीव जैसे तुम भी अजन्मा हो, लेकिन फिर भी तुम अजन्मा में और मुझ अजन्मा में अंतर है कि तुम अपने विगत जन्मों को और कर्मों को भूल गए हो, लेकिन मैं उन्हें भूला नहीं हूँ। क्योंकि मैं जब इस जगत में अवतरित होता हूँ तो मैं अपनी इच्छा से अपनी अंतरंग शक्ति के को धारण करते हुए लीला करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए आता हूँ। जबकि जीव इस भौतिक जगत में माया से वशीभूत होकर इस भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा से आते हैं। ये अंतर है तुम में और मुझ में। और जो इस तथ्य को जान लेता है वो भी धीरे धीरे मुक्ति के पथ पर आगे चलता है। ये भगवान ने बताया। फिर भगवान बताए कि इस प्रकार से वीतराग भय क्रोधा, इस प्रकार मुझे जान करके अनेक लोग हैं जो सभी प्रकार की अज्ञानता, गलत धारणा, गलत आसक्तियों को छोड़ करके मेरी शरण में आए और मुझे प्राप्त किए। वीतराग भय क्रोधा मनमया ममुपाशिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मन भाव मागता। लेकिन फिर प्रश्न ये उठा, लेकिन भगवान ऐसे भी तो बहुत लोग हैं जो आपकी शरण में जाते हैं, लेकिन आपको तत्वता समझकर नहीं जाते हैं। आपको शरण में जाते हैं क्योंकि आपके बिना तो और कुछ है ही नहीं। अंततः तो सभी के शरण आप ही हैं। देवतागण की पूजा करने वाले भी अंदर अंततः तो आप ही की शरण में ही काम करते हैं, क्योंकि देवता आपसे अभिन्न होना है, आपके ऊपर ही तो निर्भर है। देवताओं की पूजा के नियम भी तो आपने ही बनाए हैं, इसलिए इस तरह से तो वो भी आप ही की शरण में जा रहे हैं। तो क्या वो लोगों को भी वही गंतव्य प्राप्त होगा जो आपके अनन्य भक्त, जो केवल आपकी प्रसन्नता के लिए तत्वता आपको जान करके आपकी शरण लेते हैं? क्या उनको भी वही गंतव्य प्राप्त होगा जो आपको तत्वता न जान करके अन्य देवताओं की इत्यादि पूजा करने के माध्यम से परोक्ष रूप से आपकी शरण लेते हैं? क्या उनको भी वही गंतव्य प्राप्त होगा? तो भगवान ने पिछले श्लोक के उत्तर में इसका उत्तर दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। कि नहीं, ऐसा नहीं है कि गंतव्य एक ही होगा। ये बात तो सही है कि अंततः सभी मार्ग मेरे ही मार्ग हैं, लेकिन सभी मार्गों पर चलने का परिणाम एक नहीं है। हमारे तथाकथित हिंदू समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है, यतो मत तथो पथ, जिसको जो मार्ग अच्छा लगे उस मार्ग पे चलो। अंततः जैसे सारी नदियां सागर में आके गिरती हैं, वैसे ही कोई भी मार्ग पे आप चलो जिसमें आपकी श्रद्धा है, अंत में तो गति एक ही होगी। ये एक बड़ी भ्रांत धारणा है, लेकिन भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं नहीं, जो जिस मार्ग पे चलेगा उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। भले ही ये सब मार्ग मेरे ही द्वारा बनाए गए हैं, जैसे एक देश के अंदर नागरिकों के लिए सड़कें, बिजनेस प्लेस, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, ये सब भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और देश के अंदर जेल भी गवर्नमेंट के ही द्वारा बनाई जाती है। तो इस तरह से जेल और रेजिडेंशियल कॉलोनी दोनों ही जमीनें, दोनों ही आयोजन सरकार का ही है। तो उसी प्रकार से इस जगत में नरक, स्वर्ग, आध्यात्मिक जगत, पृथ्वी, सभी आयोजन भगवान का ही, सभी भगवान की सृष्टि है। भगवान से पृथक, भगवान से आत्मनिर्भर तो कुछ नहीं है। इस दृष्टि से इस भौतिक जगत में जो भी कुछ, जो भी प्राप्त करता है वो अंततः भगवान की कृपा से ही प्राप्त करता है, भगवान की इच्छा से, भगवान की अनुमति से ही प्राप्त करता है। इस तरह से भगवान कहते हैं सभी पथ मेरे ही पथ है, क्योंकि सभी पथों को बनाया भगवान नहीं है। जेल के अंदर जो अनुशासन है, जेल के अंदर जो रास्ते हैं, जेल के अंदर जो कारागार हैं, जेल के जो नियम हैं, कौन व्यक्ति जेल में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, ये सब नियम तो गवर्नमेंट नहीं बनाए हैं। लेकिन तो क्या इसका अर्थ ये हुआ तो फिर जेल में रहो कि बाहर रहो, एक ही बात है, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ। भाई गवर्नमेंट का ही तो है ये भी, जेल भी तो गवर्नमेंट की है, बाहर भी गवर्नमेंट की है, तो ठीक है अंदर रहो के बाहर नहीं है, दोनों गवर्नमेंट के ही, लेकिन हम जो परिणाम भुगतेंगे वो अलग अलग भुगतेंगे। नागरिक सरकार के आशीर्वाद, सरकार के सभी फैसिलिटीज को भुगतता है, जबकि एक कैदी जो सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है वो जेल में जो सरकार का ही आयोजन है वहां पर दंड भुगतता है। तो ये तो बड़ा अंतर है। तो उसी प्रकार से भगवान पिछले श्लोक में बताए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा तेन तथा बजाम्य हम, जो जिस अनुपात में मेरी शरण में जाता है मैं उस अनुपात में उसको परिणाम देता हूं। ऐसा नहीं है कि जो जो भी करता है मैं उसको एक ही परिणाम देता हूं। इसको समझाने के लिए फिर भगवान आज का श्लोक बता रहे हैं। जैसे जो देवताओं के रूप में मेरी पूजा करते हैं अविधि पूर्वकम, जिसको भगवान सातवें अध्याय बताए हैं, ये अन्य देवता भक्ता यजंत श्रद्धयान्विता नवाध्याय में तेपी माम एव कौनते यजंती अविधि पूर्वकम। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मेरी ही पूजा करते हैं इनडायरेक्टली, अपरोक्ष परोक्ष रूप से अविधि पूर्वकम करते हैं। जैसे जो कैदी है वो भी तो सरकार की सेवा कर रहा है, कैदी तो सरकार की सेवा कर रहा है, क्योंकि जेल भी तो सरकार का ही एक आयोजन है, वहां पर भी तो सरकार के ही नियम है, तो वो भी तो नियमों का पालन कर रहा है सरकार के। तो उस प्रकार से जो देवता की पूजा करते हैं वो भी अंततः तो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि देवताओं को बनाया किसने, देवताओं को शक्ति किसने प्रदान की है, वो सब तो मैंने ही की है। तो इस तरीके से अंततः तो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो पूजा कैसी है, अविधि पूर्वकम है। तो इस बात को थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि देवी देवताओं की पूजा, कर्मकांड और भक्ति में क्या अंतर है। तीसरे अध्याय में भगवान इस सृष्टि के सृजन के समय में कैसे भगवान जो इस सृष्टि में सभी जीव भोग करने के लिए आए हैं उनके लिए भोग करने का क्या प्रबंध करते हैं, इसका वर्णन करते हैं। सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरो वाचा प्रजापति ही अनेन प्रसिविष्यद्धम यस्तुष्ट कामधुक। कामधुक जो काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया, जीव की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। वास्तव में जीव की स्वाभाविक स्थिति है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, सभी जीव कृष्ण के नित्य दास हैं। दास अर्थात कृष्ण की संतुष्टि ही वास्तव में उनका एकमात्र कार्य है और उससे उनकी स्वाभाविक संतुष्टि होती है जीव की। लेकिन जब जीव कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे पाछे ते माया तारे झपटिया धरे, लेकिन जब जीव भगवान को भूल करके अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके भगवान को भूल करके भगवान से स्वतंत्र होने का होने की इच्छा करता है, तो ऐसे विद्रोही जीव के लिए भगवान ये भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। लेकिन अभी विद्रोही जीवों को भी जो उनकी विद्रोह की भावना के अंतर्गत जो भी कुछ देना है वो भी तो भगवान ही देंगे, क्योंकि भगवान पे तो पूर्णतः हम निर्भर हैं। एक जेल के अंदर रोटी कौन देता है कैदियों को? वो भी तो गवर्नमेंट ही देती है। और गवर्नमेंट तो चाहे कैदी है चाहे नागरिक है, लेकिन दोनों के ऊपर गवर्नमेंट का तो, सरकार का तो करुणा रहती ही है। वो करुणा का प्रकार अलग अलग है, एक को दंड के रूप में है और एक को स्वतंत्रता के रूप में है, लेकिन अंततः तो गवर्नमेंट किसी प्रजा को, किसी व्यक्ति को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान का विद्रोह करते हैं तो विद्रोह किए लेकिन निर्भर तो रहे भगवान पर ही। हम विद्रोह किए, हम सोचे कि हम अभी भगवान से मुक्त हो गए, हमें भगवान की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान तो जानते हैं कि ये मुझसे तो, मेरे पर तो निर्भर रहेगा ही। इसलिए भगवान इस बहुत ही जगत का आयोजन करते हैं, ठीक है तुम्हारी मुझे विद्रोह करने की इच्छा है, स्वतंत्र रहने की इच्छा है तो करके देखो, मैं उसका आयोजन करके देता हूँ उनको। इसलिए भगवान ये बहुत ही जगत का निर्माण करते हैं। इसीलिए प्रकृति के द्वारा जो भगवान की एक शक्ति है, बहिरंग शक्ति, उसके द्वारा शरीर हमें प्रदान करते हैं, भौतिक मन प्रदान करते हैं, भौतिक इंद्रिय विषय प्रदान करते हैं, 84 लाख योनियों में अलग अलग इंद्रियां प्रदान करते हैं, इंद्रियों के विषय प्रदान करते हैं, इतना बड़ा आयोजन करते हैं जिससे जीव जितनी भी इच्छा कर पाए, जितने भी वो सोच पाए, जो भी इच्छा है उसकी कर पाए, सबके सब इच्छाओं की पूर्ति का आयोजन भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि के द्वारा करते हैं। और अभी जब भगवान ने सृष्टि का आयोजन किया है तो वो इच्छा पूर्ति के लिए नियम भी बनाने पड़ेंगे। तो कैसे कैसे भोग होगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसके लिए भगवान ने यज्ञ विधि बनाई है। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा, यज्ञ बनाए मैंने साथ साथ प्रजा सृष्ट करने के साथ साथ। तो यज्ञ में, यज्ञ से कैसे हम अपना भोग कर पाते हैं, कैसे हमारी जो इच्छा है भगवान को भूल करके इस जगत को भोग करने की इच्छा, वो कैसे पूरी होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो पूरा होता है? देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तवः परस्पर भावयन्तः श्रेय परम वापसतः। भगवान कहते हैं ये अलग अलग मैंने जो यज्ञ बनाए हैं इसके माध्यम से तुम अलग अलग देवी देवता जो हैं, जो मेरे ही शरीर के अलग अलग अंग के समान हैं, जो अलग अलग जीव आत्माएं ही हैं, लेकिन ऐसी जीव आत्माएं हैं जो अभी भौतिक जगत में जो विद्रोह किए थे, तो विद्रोह की भावना उनकी थोड़ी कम हुई है, कम से कम वो स्वीकार किए हैं कि वो निर्भर हैं मुझ पर, कम से कम ये स्वीकार किए हैं, और लेकिन अभी भी भोग करने की पूरी इच्छा नहीं गई है। तो ऐसे जीवों को मैं देवताओं का पद देकर इस भौतिक जगत में अन्य बद्ध जीवों को, विद्रोही जीवों का संचालन करने का कार्यभार सौंप करके उन्हें अपनी सेवा करने का मौका देता हूँ, जिससे उनकी धीरे धीरे कुछ शुद्धि हो जाए और उनकी जो भौतिक इच्छा है इस प्रकार से वो पूरी हो जाए। तो इस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा तुम करो, देवी देवता यज्ञ के द्वारा जब तुम उनकी पूजा करोगे तो वो बदले में तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, इस प्रकार से तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो फिर ये उपाय भगवान ने दिया हमारे लिए। इसलिए भगवान कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्ती थी यह अघायुरिंदे राम मोघम पार्थ सजीवती। तो जो लोग भी इस भौतिक जगत में भोग करना चाहते हैं, अगर वो मेरे द्वारा स्थापित इस यज्ञ विधि का पालन नहीं करते हैं तो वो और अधिक घोर पाप करते हैं, उनको और अधिक कष्ट मिलता है। जैसे अगर हम इसका एक उदाहरण देखें तो विद्रोहियों के लिए गवर्नमेंट ने जेल बनाई, जेल बनाई तो जेल का संचालन करने के लिए भगवान ने कुछ अपने ऑफिसर्स को नियुक्त किया। अभी कैदियों से अपेक्षा है कि यदि वो कम से कम कैद में जितना दंड उनके लिए मिलना है उतना ही मिले, और ज़्यादा नहीं बढ़ जाए दंड, उसके लिए कम से कम जो कैद का सुपरिंटेंडेंट है, ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी बात का पालन करें। जो सरकार ने जेल के अंदर जो नियम बनाए कम से कम उन नियमों का पालन करें, उन नियमों का पालन करेंगे तो जितना दंड उनको मिलना है उतना ही मिलेगा। और अगर सरकार के द्वारा बनाए गए जेल के नियमों का भी उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा, और दंड ज़्यादा मिलेगा। मान लीजिए कैदी जो है जेल से फरार होने की कोशिश करे तो फिर क्या होगा, दंड और बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये भौतिक जगत में देवी देवताओं के माध्यम से आयोजन है, ये भौतिक जगत जेल है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ विद्रोही जीव हैं। तो उसके लिए भगवान ने देवताओं के माध्यम से आयोजन किया है। तो यदि हम कम से कम इस जेल के नियमों का पालन करेंगे तो हमें जो सामान्य कर्म सिद्धांत के अनुसार, पुण्य कर्म पाप कर्म के अनुसार जो मिलना है वो मिलेगा, यानी वो पुण्य करेंगे हम धीरे धीरे, पाप नहीं करेंगे फिर कम से कम। यानी कि जेल के नियमों का पालन करना वो एक तरीके से पुण्य करना हुआ कि हमारी सजा और जल्द नहीं बढ़ जाए। तो उस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि आप इस प्रकार से करोगे तो आप जो है इस जेल के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कष्ट नहीं प्राप्त करोगे। तो उन लोगों के लिए भगवान कह रहे हैं कामचतक कर्मणाम सुखम यजन्त। तो ऐसे लोग को क्या चाहिए, वो लोग क्या करते हैं फिर, जो देवी देवता हैं, जो जेल के सभी ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स की पूजा करते हैं। तो ये जो देवी देवता गण हैं वो भगवान की सरकार में जेल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं। वो भी इस जेल के अंदर जो नियम है, कर्म नियम, कर्म का सिद्धांत जेल के अंदर है, इस जगत के अंदर है। आध्यात्मिक जगत में तो कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म का मतलब इंद्रिय भोग के मार्ग में किए गए कार्य, उसको कर्म कहते हैं। भक्ति भगवान की सेवा, जीव की संवैधानिक स्थिति कृष्ण सेवा, उसके अंदर जो कार्य होते हैं वो कर्म नहीं कहलाते हैं, वो भक्ति कहलाती है। जैसे भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाना वो कर्म नहीं होता है ना, वो भक्ति कहलाती है। हाँ, अगर भगवान का नाम भी यदि इस जगत में भोग करने की इच्छा से किया जाए तो वो भी कर्म की परिधि में आ जाता है, तो उसे चेतना महत्वपूर्ण है। लेकिन सामान्य कर्म जो हम इस भौतिक जगत में इस शरीर के द्वारा, इस शरीर की देखभाल के लिए या भोग करने की इच्छा से विषयों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, वो सब कर्म की परिधि में आते हैं, कर्म कहलाते हैं। तो ये सब कर्म करने के जो नियम इस जेल के अंदर हैं, उस जेल के नियमों के अंदर ही बंधे हुए हैं ये सभी देवी देवता गण। जैसे जेल का जो सुपरिंटेंडेंट है वो भी तो जेल के नियमों के अंदर ही तो बंधा हुआ है। किस कैदी को कितनी रोटी देनी है, किसको कब कितना फ्रीडम देनी है, कब कितने समय उसको जेल कारागार से बाहर आने की छुट्टी देनी है, कब अंदर जाना है, कौन क्या करे तो उसको क्या पनिशमेंट देना है, ये सब नियम तो सरकार ने बनाए हुए हैं। और जो जेल का ऑफिसर है वो बाध्य है सरकार के द्वारा दिए गए जेल के इन नियमों का पालन करने के लिए। अगर कोई कैदी आकर के जेलर से बोले कि आप ऐसा करो मुझे जो है घर जाने की छुट्टी दे दो, आज थोड़ा मैं दो दिन घर जाके आता हूँ, तो क्या जेलर के हाथ में ऐसे करके उसको छुट्टी देना? अगर जेल का नियम नहीं है कि कोई भी ऐसे बाहर जा सके, तो ऑफिसर का की हिम्मत नहीं है, ऑफिसर का अधिकार नहीं है कि वो ऐसा कर सके, क्योंकि वो भी जेल के नियमों में बंधा हुआ है। हाँ, कैदी अलग प्रकार के नियमों से बंधे हुए हैं, वो वहाँ दंड भुगत रहे हैं, देवता उस प्रकार के दंड नहीं भुगत रहे हैं, जो जेलर है उस प्रकार का दंड नहीं भुगतता है, लेकिन वो भी उन नियमों से बंधा हुआ है। तो जो देवी देवता गण हैं उनकी व्याख्या भागवतम में इस प्रकार से हुई है, भजंती ये यथा देवान देवा अपि तथैवतान छायेव कर्म सचिवाः साधवो दीन वत्सलाः। ये देवता गणों को बताया गया है कर्म सचिवाः, सचिव होते हैं ना, सचिव अटेंडेंट्स, सचिवालय होता है, सेक्रेटरी, सेक्रेटरिएट सचिवालय। तो कर्म सचिवाः ये देवता गण जो है वो कर्म के अधिभूत हैं, कर्म के सेक्रेटरीज हैं, कर्म के नियमों को प्रतिपादित करने वाले ये ऑफिसर्स हैं। तो इस प्रकार से ये भी कर्म के ही नियमों को पालन करने वाले हैं, कर्म के नियमों के अंतर्गत ही ये किसी को कुछ भी दे सकते हैं। जैसे जेल के अंदर को जो भी जेल का अधिकारी है वो जेल के नियमों के अंतर्गत ही कैदियों को जो कुछ भी देना है वो दे पाएगा, उसके बाहर जाकर के नहीं देता, अपनी स्वेच्छा से नहीं दे सकता, अपनी स्वेच्छा से नहीं दे सकता। तो उसी प्रकार से सभी देवी देवता गण भी हमें जो कुछ देंगे वो इस भौतिक जगत के अंदर भगवान के द्वारा जो कर्म का नियम बनाया गया है उसके अंतर्गत ही देंगे। यानी कि देवी देवताओं की पूजा कर्म कांड का भाग है, वो कर्म मार्ग का एक भाग है, वो पुण्य कर्म का एक भाग है। जो बताया है भगवान ने कि तुम्हें अगर इस भौतिक जगत में भोग करना है तो तुम देवी देवताओं की पूजा करो, अगर देवी देवताओं की पूजा नहीं करोगे और भोग करना चाहोगे तो जेल की सजा और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पाप कर्म होगा। इसलिए जो लोग इस जगत में भोग करना चाहते हैं उन्हें अनिवार्य है कि वो देवी देवताओं की पूजा करें। एक वर्ग है कर्म मीमांसक, जो कहते हैं कि भाई देवी देवता की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना बस कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। लेकिन उनके विचार में क्या है कि ये जो कर्म का सिद्धांत है वो मैकेनिकल है, उसमें कोई व्यक्ति नहीं है संचालन करने वाले, ऐसा उनका सोचना है। कर्म मीमांसक अनिश्वरवादी, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। शास्त्रों में बताया है कि कर्म का सिद्धांत पालन करवाने वाले व्यक्ति हैं, देवतागण पर्सनैलिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि बिना व्यक्तियों के केवल मात्र प्रकृति के नियमों के द्वारा संचालित सब कुछ हो रहा है। कर्म मीमांसक ऐसा मानते हैं, ये सच्चाई नहीं है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में भोग करने के लिए केवल मात्र आप केवल कार्य करो और व्यक्तियों से द्वेष करो, देवताओं से, वो नहीं चलेगा। जैसे कोई कैदी है, कोई कैदी सोचे कि मैं जो है जेल का नियम है सुबह इतने बजे उठना है, मुझे ये करना है, मैं करूँगा, और जेलर जो है उसको गाली दूंगा, तो क्या होगा? जेलर को गाली देना, जेलर का अपमान करना, वो भी जेल के नियमों के अंदर आता है कि कोई भी कैदी जेलर का अपमान नहीं करेगा, वो भी एक नियम है। तो जो कैदी इस नियम का पालन करेगा उसको वो ऑफिसर बाध्य है उस प्रकार का फैसिलिटी देने के लिए। तो उसी प्रकार से देवी देवताओं की पूजा का पूरा आयोजन है कि देवी देवताओं की पूजा करना पुण्य कर्म के अंतर्गत है। इस देवता की पूजा कीजिए, ये आपका पुण्य कर्म है, नहीं करोगे तो पाप करोगे, और इस प्रकार से अगर आप पूजा करोगे, याचना करोगे, तो देवी देवता जो आप याचना कर रहे हैं, जो उनके हाथ में है, जो कर्म सिद्धांत के अनुसार बने हुए हैं, वो उतना ही देंगे। इसलिए उनको कर्म सचिव कहा गया है, वो कर्म के सचिव हैं, वो कर्म के अंडर में हैं, वो कर्म से बाहर नहीं है, वो खुद इस कर्म बंधन में है, वो बाध्य हैं कर्म के अनुसार हमें देने के लिए, और उतना ही दे सकते हैं जितना कि कर्म के अनुसार हमें मिलेगा। और कर्म के अनुसार हमें क्या मिलता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस भौतिक जगत के सुख दुख ही मिल सकते हैं कर्म के अनुसार, है ना। भगवान भगवद गीता में बताए हैं कि देवी देवता हमें क्या दे सकते हैं। भगवान कहते हैं सबसे पहले तो कि जैसे यहां बताया कांक्षित कर्म कि व्हाट इज दैट अल्पबुद्धयः, हाउ डज द श्लोक स्टार्ट्स, कामैस्तैस्तैतज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्यनियता स्वयाः। जिनकी बुद्धि कामैस्तैस्त हृतज्ञाना, जिनकी बुद्धि मारी गई है किससे? भौतिक भोग किससे, यानी सारे जीव इस भौतिक जगत में जितने भी हैं, एक्सेप्ट जो अभी भक्ति मार्ग में भगवान को शरणागत हो रहे हैं, उनके अलावा वो लोग देवताओं की शरण में जाते हैं। और जो लोग देवताओं की शरण में नहीं जाते, पाप कर्म करते हैं, वो तो विकर्मी हैं, उन वो भी अलग हो गए इससे। तो काम ही सही सिद्ध ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धया अर्चितम इच्छति तस्य तस्य श्रद्धयामचान तामेव विदधाम्यहम्। जो भोग करने की इच्छा से जैसा उसको भोग करना है उस प्रकार से वो जिस देवता की पूजा करना चाहता है, मैं उस देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को मैं ही स्थापित करता हूँ, कृष्ण कहते हैं। क्योंकि कृष्ण के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, जो भी करवाना तो अल्टीमेटली कृष्ण को अनुमति देनी पड़ेगी। अगर किसी को शिवजी की पूजा करनी है तो शिवजी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने वाले भी कृष्ण ही हैं। अगर गणेश जी की पूजा करनी है किसी को धन प्राप्त करने के लिए, विघ्न विनाशन के लिए, तो भी वो वही कृष्ण ही करेंगे। किसी को सुंदर पत्नी प्राप्त करने के लिए शिव जी की पूजा करनी है या उमा की पूजा करनी है, तो वो कृष्ण ही उसके हृदय में वो श्रद्धा स्थापित करेंगे। देवी देवता खुद अपनी पूजा के लिए किसी के हृदय में श्रद्धा स्थापित करने के लिए भी अधिकृत नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। भगवान स्पष्ट इस बात को बताए, क्योंकि देवी देवतागण स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान पर निर्भर है। सतया श्रद्धया युक्त तस्य राधनम ईहते, वो इस श्रद्धा से युक्त होकर के उस देवता की फिर पूजा करता है जो हम देख रहे हैं। उल्लास से हम गणेश गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ और अलग अलग कर, ये चाहिए हमें, वो चाहिए हमें, ये चाहिए, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले, ऐसे पूरी उत्साह से हम, तो ये श्रद्धा उनके अंदर है। और श्रद्धा उत्पन्न करने उन्होंने कभी पूजा की अच्छे से और उनकी कुछ मन्नत पूरी हो गई, उनकी श्रद्धा निष्ठ हो गई, हाँ ये हैं व्यक्ति जो मेरी सारी पूजा सारी कामनाएं पूरी कर सकते हैं, मैं इनके लिए कुछ भी करूँगा। यहाँ तक कि असुरगण देवताओं के लिए अपना सिर भी काटने को तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं रावण, हाँ तो क्योंकि जब उनको जहाँ भौतिक सुख मिल रहा है तो फिर वो कुछ भी दाव पे लगा सकते हैं ना, ये तो बिजनेस हो गया। फिर बिजनेस में आदमी अगर उसको पता है कि मुझे 1 लाख देने से 1 करोड़ मिलेगा, 10 लाख देने से 10 करोड़ मिलेगा, तो क्यों मैं 10 लाख लगाऊं, तो वो फिर देवताओं की पूजा के लिए कुछ भी करेगा, मनसा देवी जाएगा, हर महीने जाएगा, नंगे पैर जाएगा, अंगारों पे चल करके जाएगा। हम देखते हैं देवताओं की पूजा करने वाले कैसे बड़े बड़े भयंकर भयंकर कार्य और मुश्किल कार्य करते हैं, क्यों, बदले में बहुत बड़ा सुख मिलना है, इसलिए कुछ भी करने को हम तैयार हैं। तो हमें लगेगा सामान्य लोग को देखने लगेगा वाह क्या भक्ति है, वो भक्ति नहीं है, वो बड़ा बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। वो जानते हैं कि अगर मुझे सुख चाहिए तो मुझे ये सब पुण्य कर्म करने होंगे, इन देवताओं को प्रसन्न करना होगा, तो वो उसको उनको प्रेरणा मिलती है और इस प्रेरणा करने से वो ऐसा करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं सत्या श्रद्धया युक्त तस्य आराधनमीयते भजन, तो वो उसकी पूजा करते हैं। लेकिन ये जितने भी देवी देवताओं की पूजा उपासना करने से फल प्राप्त होते हैं, अंतवत्तु फलंते शाम तद भवत्यल्पमेद शाम, ये जो अल्पमेदश हैं अल्प बुद्धि वाले जो लोग हैं उनको जो भी फल प्राप्त होते हैं वो सब अंतवत्तु, वो सब टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट कुछ प्राप्त नहीं हो सकता देवताओं की पूजा करने से, क्योंकि उतना ही उनका अधिकार है। देव देवता खुद टेम्परेरी हैं, उनकी सत्ता टेम्परेरी है, जेल के अधिकारी को परमिशन नहीं है किसी कैदी को जेल से मुक्त करने की, वो अधिकार उनका है नहीं। मुक्ति प्रदाता सर्वेशां विष्णु एव न संशयः, मुक्ति प्रदान करने का कार्य और किसी देवता का नहीं है, वो केवल विष्णु कर सकते हैं, तो वो उनका अधिकार नहीं है, तो आपको मुक्ति दे नहीं सकते, वो तो केवल आपको पुण्य कर्म जो आप कर रहे हैं उनकी पूजा करने के रूप में उसके अनुसार आपको इस भौतिक जगत का सुख दे सकते हैं, इतना वो कर सकते हैं, दैट्स ऑल। और वो इतना ही कर सकते हैं, आपको मुक्ति नहीं दे सकते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं मैक्सिमम वो कुछ भी दे सकते हैं, वो आपको केवल टेम्परेरी चीज दे सकते हैं। इसलिए आप देखिए हिरण्यकश्यपु ने जब ब्रह्मा की पूजा की और अमर होना चाहा तो ब्रह्मा ने इनकार कर दिया, ये मैं नहीं दे सकता तुमको, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है, ब्रह्मा खुद अमर नहीं है तो वो कैसे किसी को वरदान दे सकते हैं अमरत्व का। लेकिन जीवों को अमरत्व कहाँ चाहिए, जीवों को तो सामान्य रूप से केवल भौतिक जगत के भोग चाहिए, उन्हें तो नौकरी लग जाए, कमर का दर्द ठीक हो जाए, पैसा मिल जाए, बिजनेस बढ़िया चल जाए, इसके आगे कहाँ सोचते हैं वो लोग, इसलिए उनको अल्प बुद्धि कहा गया है, छोटी बुद्धि वाले। ये मनुष्य शरीर मिला अभी इसमें पूरे भवबंधन से ही निकल सकते हैं, उसको छोड़ करके पेटी थिंग्स निरर्थक चीजें मांग रहे हैं। जैसे एक बहुत बूढ़ी स्त्री थी और गरीब थी, जंगल में जाकर के लकड़ी चुनती थी और चुन करके गट्ठड़ अपने सिर के ऊपर रखती थी और फिर चल करके घर वापस आती और फिर अपना खाना बनाती थी। तो एक दिन इसी प्रकार से जंगल में गई और फिर वो गठड़ी उठाई और चल रही थी और ठोकर लगी और वो जो लकड़ी का गट्ठा है वो सब नीचे गिर गया। तो अनायास ऐसे पुकारा भगवान को, तो भगवान आए, बोले हाँ क्या चाहिए, बोले अच्छा आप आ गए, अच्छा ये गठड़ी जो है ये सिर के ऊपर रख दीजिए मेरे। तो अभी जब भगवान सामने आ गए तो मौका है कि भगवान से वो कुछ भी मांग सकती थी कि भगवान ये मुझे गठड़ी उठानी नहीं पड़े, ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा ही मांग सकती थी। लेकिन अल्प बुद्धिशाली थी इसलिए क्या मांगा कि ये बोझा दोबारा से सिर के ऊपर रख दीजिए, ये बोझा मुझे ढोना ना पड़े, ये नहीं मांगा, ये बोझा दोबारा से मेरे सिर पर रख दीजिए, ये मांगा। तो उसी प्रकार से हमें ये मनुष्य जीवन में भगवान अवसर दे रहे हैं कि हम भगवान की शरण में जा करके जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं, सब प्रकार के बोझे से निकल सकते हैं और अपना नित्य सुख में, भगवान की सेवा के अंदर सुख में जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, ये नहीं मान करके हम सभी अल्प बुद्धिशाली लोग इस भौतिक जगत में क्षणिक सुख मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं। संपत्ति क्या है? और बड़ी जंजीर है। ज्यादा संपत्ति, उससे ज्यादा मोह कि मैं धनवान हूं, मैं सुखी हूं, और ज्यादा मोह, और ज्यादा भौतिक जगत में आसक्ति। और ज्यादा आसक्ति का मतलब क्या है? और अधिक समय हमें इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु अलग अलग शरीर लेने पड़ेंगे। तो ये संपत्ति मांगना, संपत्ति को सोचना कि ये मेरा सुख है, ये मूर्खता है ना। मेरे परिवारजन, एक आईएएस है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, वाह, अभिजनमान अस्मी भगवान कहते हैं भगवद गीता में। मूर्ख लोग सोचते हैं ऐसा सोच करके कि मैं कितना वेल प्लेस्ड हूँ, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, आई एम वेल सेटल्ड, माई फैमिली मेम्बर्स आर एवरीबडी वेल सेटल्ड, एक डॉक्टर इंजीनियर सब बढ़िया, बस कोई चिंता ही नहीं। अरे चिंता क्या नहीं, सबके सब मरेंगे, आप भी मरोगे, अभी आगे कभी देखो क्या होने वाला है। लेकिन वो मूर्ख है, उनको दिखता नहीं है कि सामने मृत्यु खड़ी है, कल अपार कष्ट आने वाला है, ये क्षणिक सुख से क्यों संतुष्ट हो रहे हैं। लेकिन मूर्ख हैं, इसलिए उनकी बुद्धि में दिखता नहीं है उनको। पश्यन अपि न पश्यति, तस्य प्रमत्त निधनम पश्यन अपि न पश्यति, उनके निधन को देख नहीं सकते हैं, अपने शरीर के निधन को, अपने परिवारजनों के निधन को देख नहीं सकते हैं, जिन्हें हम अपना मान रहे हैं, जिनसे हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ मेरे पास है, मेरा बच्चा मेरे पास है, मेरी पत्नी, मेरे पति मेरे पास है, कितना अच्छा मेरा जीवन, कब तक पास रहेंगे, एक सेकंड खत्म हो जाएंगे, फिर कितना दुख होगा। तो क्या नहीं सोचना चाहिए कि ये दुख आए नहीं, इसके लिए क्या करना होगा, मेरा परमानेंट परिवार कहाँ है, हमारे परमानेंट संबंधी कहाँ हैं, ये अनित्य जीवन में हम क्यों आ सकते हैं। तो ये बुद्धि आना, ये बड़ी रेयर है। कोटि कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते, ये कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से ही प्राप्त नहीं होती है, ये भगवत भक्तों से कुछ जाने अनजाने में, कुछ उनकी सेवा, उनके माध्यम से कृष्ण सेवा करने से ही बुद्धि प्राप्त होती है। इसलिए रेयर है ये शुद्ध भक्ति, इसलिए भगवान की शरण में जाना बहुत रेयर है, ये देवी देवताओं की पूजा करने में भीड़ लगेगी। और वो हर एक जगह है, इस्लाम हो कि क्रिश्चियनिटी हो कि हिंदू धर्म हो, मुसलमानों में भी सबसे बड़ा ग्रुप है, सब ज्यादातर लोग किस क्या है, जन्नत जाना है, हिंदुओं में स्वर्ग जाना है और क्रिश्चियनिटी में हेवन जाना है, बात तो वही है, रहना इसी भौतिक जगत में है। कोई भी अपनी स्वाभाविक स्थिति, प्रेम, निस्वार्थ भाव से उस परम पुरुष की सेवा करना, वो नहीं है। परम पुरुष को मानते हैं, अल्लाह है, यहोवा है, या अगर हिंदू धर्म में कोई कृष्ण को जानता भी है तो भी किस लिए, अल्लाह आप हैं इस जगत में, मेरे को अच्छा रखो, बाद में जन्नत भेज देना, वहाँ जाएंगे। लेकिन अल्लाह जो इतना महान है, जिसने जन्नत बनाई है, वो कितना उसका जीवन खुद, उसकी पर्सनैलिटी खुद कितनी आकर्षक और कितनी महान होगी, उससे उसकी सेवा करना कितना महान होगा, ये नहीं विचार आया। हाँ, जिसने ये जेल बनाई है और जेल में इतनी सुविधाएं दी हैं, उसकी वास्तविक इच्छा क्या है, वो जानने की जगह जेल में ही हमें फर्स्ट क्लास जेल देना, ये लोहे की जंजीरें हैं इसकी जगह सोने की जंजीर देना, ये मांगना मूर्खता नहीं है। ये मांगिए कि सोने की जंजीर भी नहीं हो, लोहे की जंजीर भी नहीं हो, हमें मुक्ति प्राप्त हो, हमें वास्तविक हमारी स्थिति क्या है, आखिर हमारा आपके साथ संबंध क्या है, हम कौन हैं, आप कौन हैं, हमसे आप क्या चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये प्रश्नों के उत्तर ढूंढने चाहिए। तो इसलिए भगवान भगवद्गीता में इस प्रकार से समझा रहे हैं कि ये देवी देवता की पूजा और भक्ति दोनों अलग अलग है, एक कर्मकांड है एक भक्ति है, दोनों में हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अक्सर क्या होता है, हम भक्तों के संपर्क में आने से पहले तो ज़्यादातर लोग कर्मकांडी होते हैं, किसी न किसी प्रकार से देवी देवताओं की पूजा आज तक करते हैं, हमारे घरों में रीत चली आई है ना, हमारे दादा परदादा महाकाल दुर्गा सभी, तो ठीक है, अच्छी बात है, अकर्म पाप कर्म करने से तो अच्छा है, देवता की को मान रहे हैं, वेरी गुड, अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो जेल में ही रहना जैसा है ना।
तो कर्मकांड ज्ञानकांड केवल विषय भांड, इसलिए आचार्य कहते हैं ये कर्मकांड और ज्ञानकांड दोनों विष के ही भांड हैं विषी अंततः, एक विष में थोड़ा सा ऊपर से शुगर कोटिंग हुआ है बस, पर है वो विषी। तो इसलिए भगवत गीता का संदेश हमारे लिए है कि हमें ये विष के भांड को छोड़ करके भक्ति में आना चाहिए, यानी कृष्ण ही हमारे स्वामी हैं, वो हमारी प्रेम के पात्र हैं, हमारा उनके साथ संबंध निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करने का है, वो जीव की स्वाभाविक स्थिति है। और स्वाभाविक स्थिति में हम हमेशा स्वाभाविक रूप से जीव के स्वाभाविक स्थिति आनंद की है वो रहेगा, और भौतिक भोग करने में आनंद नहीं है, वो कष्ट है, ये समझना है, और इस प्रकार से कृष्ण की सेवा में अपने को समर्पित करना है। तो बहुत भक्तगण आते हैं तो वो कर्मकांड करते आए हैं, तो अभी आते हैं मंदिर में तो फिर वो जो अटैचमेंट है देवी देवताओं की पूजा का वो छोड़ नहीं पाते हैं आसानी से, कि कृष्ण भक्ति भी करेंगे, अभी हरे कृष्णा मंत्र भी करेंगे, लेकिन भाई अभी तो हम पिछले 20 साल से हम तो शिवजी शिवरात्रि पे ये करते आए हैं, शिव जी की पूजा करते आए हैं, दुर्गा जी को उठाते आए हैं, गणेश जी कैसे छोड़ देंगे, नाराज तो नहीं हो जाएंगे, वो शंका है अंदर, क्योंकि अभी भी कृष्ण में श्रद्धा नहीं आई कि कृष्ण सर्वोपरि है, ये सभी देवी देवतागण उन्हीं के ही अंग हैं, अभी तक ये श्रद्धा नहीं आई है, इसलिए छोड़ना नहीं चाहते हैं, चलो कृष्ण को ही मना लेंगे, उनको भी क्यों नाराज करना है, साथ साथ चलेगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, कृष्ण की भक्ति शुरू नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण की भक्ति का मतलब है अब आप अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो समझ करके कि कृष्ण हमारे स्वामी हैं, राखे कृष्ण, जो कृष्ण चाहे, माता पिता के प्रति समर्पित होता है, माता पिता जो करें, डांटे मारे जो करें, हैं मेरे वो पिता बस, और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसी और का आश्रय नहीं लूंगा। ऐसा नहीं कि माता पिता डांटे तो जाके पड़ोसी की शरण ले, मैंने माता पिता छोड़ दिया आज से मैं आपके घर रहूंगा, ऐसा बच्चा करता है? माता पिता डांटे मारे जो करें, पिताजी हम तो यहीं रहेंगे, ऐसा नहीं कि डांट दिया छोड़ के चला गया, नहीं, इसे कहते हैं भक्ति। अन्य देव आश्रय नहीं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो कुछ भी हो, कृष्ण ही एकमात्र हमारी शरण है, उसे भक्ति कहते हैं। और उसके नीचे कुछ भी और कुछ है, चाहे भले ही हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, जन्माष्टमी उपवास रख रहे हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा तो यही है कि कृष्ण भी हैं, देवी देवता भी हैं, उनसे भी ये मांग लेंगे, कृष्ण से भी ये मांग लेंगे, यानी अभी भी कर्मकांड ही है, वो भक्ति शुरू नहीं हुई है हमारी। तो इस बात को अच्छे से हमें समझना चाहिए और इस प्रकार से अपने जीवन को ढालना चाहिए, कृष्ण की एकांत कृष्ण शरण लेना चाहिए। हरे कृष्ण। इस विषय में अगर किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि अभी गणेश पर्व चल रहा है और इसके बाद माँ दुर्गा जी को रखेंगे, और अभी पीटी आपकी जन्माष्टमी में गई तो उसमें भी लोगों ने उत्सव बनाया, और जैसे कि 33 करोड़ देवी देवता है हमारे यहाँ, प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे हर 33 करोड़ हैं, कुछ लोग शंकर जी के उपासक होंगे तो कुछ लोग माँ भगवती के उपासक होंगे, मतलब वगैरह वगैरह, इष्ट मेरा कहना प्रभु जी इष्ट एक हो, और अगर मैंने एक भगवान को माना है कृष्ण भगवान को, और पूजा मैं कृष्ण भगवान की करता हूँ, तो जैसे गणेश जी हैं क्या उनका मैं सम्मान कर सकता हूँ?
सम्मान तो हमें करना ही है, सम्मान तो हम चीटी का भी करते हैं, गणेश जी की तो बात छोड़िए।
तो बस यही तक प्रभु जी,
लेकिन
जैसे परम पिता कृष्ण है, कृष्ण की पूजा करिए,
पूजा नहीं करिए, कृष्ण की तो सेवा कीजिए।
हाँ, सेवा,
पूजा होता है केवल सम्मान दिखाना, तो उस तरह से हम देवताओं को सम्मान दिखाते हैं।
प्रभु जी मेरा मान क्या है, प्रभु जी मैं अमरकंटक धाम से हूँ जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, तो हालांकि हमारे यहाँ कृष्ण जी को हरदम शत्रु से मानते आ रहे हैं और बहुत अच्छी जन्माष्टमी होती है,
लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि सेवा का मतलब क्या होता है, मानना मतलब अलग है।
वो मैं बहुत पीछे हूँ प्रभु जी,
क्या जानते हैं
आपसे, यही है कि सम्मान कर सकते हैं जैसे गणेश जी हैं,
सम्मान
जाके मतलब जैसे मैं जहाँ पे रह रहा हूँ रूम पे जैसे बगल में गणेश जी की मूर्ति है, मैं निकला कोचिंग के लिए, मन में आया कि जाता हूँ खड़े हो जाता हूँ, दो मिनट के लिए हाथ जोड़ के, तो ये सही है।
हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जहाँ जहाँ पर देवी देवतागण का मंदिर है, अगर वैष्णव वहाँ जाते हैं तो उन देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं। तो लेकिन हम विशेष उसके लिए आयोजन अपना समय निकाल के अपने घर में और पूरा अलग आल्टर बनाएंगे और ये रेगुलर वर्शिप वो नहीं, जैसे सम्मान देने के लिए हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई ऑफिसर हमको मिल गया, कोई गवर्नमेंट का सल्यूट सर नमस्कार, उस तरीके से।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
और कोई प्रश्न? यस
हरे कृष्ण प्रभु। जैसा आपने बताया कि हम लोग तो सामने तो ये होता ही है कि हर व्यक्ति को चाहत होती है मकान होना चाहिए, मतलब बच्चे के लिए अच्छी पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं और भी कई वासनाएं कामनाएं हमारी इच्छा रहती है। तो मतलब मैंने पर्सनली भी फील किया है कि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना बहुत थोड़ा कुछ कठिन सा लगता है, क्योंकि वो चीजें बार 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 आती हैं। और जैसे प्रभुपाद जी को मैंने देखा और कई चीजें पढ़ी है, यूएस के जैसे लोग भक्ति में बहुत आगे हैं, उतना उनको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी वही उत्साह वही मेहनत और वही लगन होना चाहिए। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न आता है कि वो लोग बहुत संपन्न है, उनके पास सब कुछ है, मतलब किसी चीज की उनके पास कमी नहीं है, तो उनके पास सब कुछ वो भोग चुके हैं और आज वो यहाँ पे आते तो बड़ा साहस बना पाते हैं, कृष्ण भक्ति भी कर पाते हैं, लेकिन ये मतलब हम लोगों के लिए, एक सामान्य आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए पहले उसको बच्चे की पढ़ाई देखना है, अपने घर की जरूरतें देखना है, अपने परिवार की व्यवस्था देखना है, और भी कई परेशानियां। एक्चुअली परेशानी नहीं है ये, तो मानने वाली बात है, मानो तो परेशानी है, मानो तो कुछ भी नहीं। तो ये जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने में सारी अड़चनें आती हैं, तो इन अड़चनों को कैसे ओवरकम किया जाए, किस तरीके से ओवरकम हो?
तो कृष्ण भक्ति में हमारा संसार है, परिवार है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जिम्मेदारियां और आसक्ति में अंतर है। शरीर का पालन पोषण करना जिम्मेदारी है, मेरा बच्चा संसार का सबसे बड़ा, भोपाल का सबसे नंबर वन IAS ऑफिसर बने और ये बने और मेरी कार सबसे बड़ी हो, ये आवश्यकताएं नहीं है, ये भोग वासनाएं हैं, अनावश्यक भोग वासनाएं। शरीर को टिकाना है जिस शरीर से हम भगवान की सेवा कर सकें, इस शरीर को हष्टपुष्ट रखने की इच्छा होनी चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है। लेकिन आज हमने अपने कर्तव्य ये नहीं रखे ना, आज हमने अपने कर्तव्य को अपना मान सम्मान सोसाइटी में होना चाहिए, ये हमने अपना, ये कर्तव्य नहीं है हमारा, तो हम उसको मिस्टेक कर रहे हैं कि ये तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन ये अनावश्यक भोग वासनाएं हैं। आज पूरा संसार में हमेशा से ही लोग तो भोग वासना में लिप्त रहते हैं, इसलिए वो केवल शरीर के यापन से संतुष्ट नहीं है, केवल शरीर टिका रहा है इससे संतुष्ट नहीं है, वो तो शरीर के द्वारा एंजॉय करना चाहते हैं। तो एक भक्त जो होता है गृहस्थ, वो अपने शरीर को टिकाना, शरीर के सभी जो उसकी जिम्मेदारी है उसको शरीर को टिकाने के लिए उतना वो कार्य करता है ना, और उसके लिए जो भी चिंता है वो लेता है, लेकिन क्योंकि वो सभी चिंता शरीर को टिकाना और शरीर को टिकाने से वो भगवान की सेवा कर रहा है, इसलिए वो शरीर को टिकाना भगवान की सेवा का एक अंग बन जाता है। लेकिन जब हम शरीर को टिकाने के लिए नहीं, उसको सेपरेटली इस जगत को एंजॉय करने के लिए मेंटेन करते हैं और शरीर का इस्तेमाल इस जगत को एंजॉय करने के लिए करते हैं, तब फिर वो कृष्ण सेवा से हमारा ध्यान हमारी शक्ति को बटोरता है, अलग ले जाता है। तो ऑब्स्टेकल कहाँ है? हमारी आसक्तियों में। क्या हम अभी भी अपना जीवन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं? क्या आज जो भी हम उपयोग कर रहे हैं क्या वास्तव में हमारी आवश्यकताएं हैं या वो हमारी आसक्तियां हैं? ये हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने हृदय में झांक के देखना पड़ेगा। आसक्तियां हमारे मार्ग में ऑब्स्टेकल्स है, क्योंकि वो आसक्तियां जैसे रूप गोसाई बताते हैं, अत्याहार, आवश्यक से अधिक अधिक एकत्र करने की इच्छा, वो ऑब्स्टेकल है। अगर हम सामान्य आवश्यकताओं से संतुष्ट हैं तो वो ऑब्स्टेकल नहीं है। इसमें दूसरी बात यह है कि आज जिस समाज में रह रहे हैं, मॉडर्न सिटी लाइफ में, वो बना ही इस प्रकार से है कि अनावश्यक चीज़ें आवश्यकताएं बना दी गई हैं। तो इसलिए अगर आप इस सोसाइटी का अंग रहते हैं तो अनचाहे भी आपको वो अनावश्यक चीजों के प्रति दौड़ना पड़ता है, तो वो ऑब्स्टेकल है। इसलिए पूरा जो आधुनिक कल्चर है वो भक्ति के लिए अवरोध है ही, लेकिन उसमें भी कम से कम आप अपने तरफ, आपके हाथ में जितना है उतना आप अपने को लाइफ को सिंप्लीफाई करें, वो पहला कदम होगा। और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि आपको मौका दें, ऐसा अवसर दें जिससे कि आप अपनी लाइफ को इतना सिंप्लीफाई कर सकें जैसा भगवान का आयोजन है उतना, तो वैसा हमको करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अमरीकी लोगों के पास तो बहुत पैसा था इसलिए वो तो आराम से भक्ति कर रहे हैं, सुदामा भी भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि पहले हमारे पास खूब पैसा होगा फिर भक्ति में मन रहेगा। तो बहुत से लोग, तो ज़्यादातर लोग तो पैसे वाले भक्ति नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग तो पैसे वाले भक्ति नहीं करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा होने से आसानी होती है भक्ति करने में, वो आपकी गलतफहमी है। भक्ति जिसको समझ में आ गया वो भक्ति करेगा, क्योंकि भक्ति करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान को तो क्या चाहिए, एक पत्र पुष्प फूल। गरीब से गरीब आदमी भगवान को पसंद कर सकता है ना, उसके लिए पैसा नहीं चाहिए। पैसा हमें चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए। वो तो हम आड़ ले रहे हैं कि भगवान देखो अच्छा हो जाएगा सब, तब मैं आपकी भक्ति करूँगा, फिर मेरे को चिंता नहीं रहेगी। पैसे से लोभ आता है। अगर ऐसा होता कि फिर तो हम भगवान की जगह तो सब पैसे वाले, फिर तो निश्चिंत होकर के धीरूभाई अंबानी और अंबानी सभी फिर तो बस भगवान की भक्ति करते। लेकिन सब पैसे वाले तो और ज़्यादा व्यस्त हैं करोड़ के 10 करोड़ बनाने में, क्योंकि पैसे से लोभ आता है, शांति नहीं होती है। इसलिए भक्ति तो शुरू करनी है जब जहाँ भी आप हैं, आपकी जो भी इकोनॉमिक पोजीशन है वहीं से आप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई और चीज़ पहले क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि पहले मेरे को ये स्थिति प्राप्त होगी तब मैं भक्ति करूँगा, ये सब बहाने हैं। अगर जान का भक्ति करना है, जो भी आप हैं, आप गरीब हैं तो गरीबी से भक्ति शुरू कीजिए, अमीर है तो अमीर से भक्ति शुरू कीजिए, डजंट मैटर स्थान स्थित, जो भी आपकी स्थिति है यू स्टार्ट नाउ, दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। अभी समय हो गया है, दे सकते हैं? ओके बिहाइंड, ओके आपका प्रश्न।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। कोई बात नहीं, देखिए हमारा मूवमेंट जो है, हमारा मूवमेंट मतलब भगवद गीता शिक्षण प्रणाली है, शिक्षण। भगवान ने अर्जुन को बस नहीं कहा युद्ध करना है युद्ध करो दैट्स इट, भगवान ने अर्जुन को समझाया क्यों युद्ध करना है, मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूँ, भगवान ने अलाउ किया अर्जुन को प्रश्न पूछने के लिए। तो ये भगवत विधि शिक्षण विधि है, जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको कन्विंस हुए बिना, श्रद्धा के बिना जो हम कह रहे हैं वो कीजिए। इसलिए तो हम ये कक्षा रखते हैं हर संडे कि आप तो नियमित रूप से आइए, और इसीलिए तो प्रभुपाद ने पुस्तकों के रूप में सब ये ज्ञान विस्तार रूप से दिया है कि आप इसको नियमित रूप से पढ़िए और जानिए, और आप कन्विंस हो तो कीजिए। तो यस, निश्चित रूप से, सो वी आर नॉट रिजेक्टिंग यू कि अगर आज आप घर जा करके आपने अगर देवता की पूजा की तो कल से आप यहाँ मंदिर मत आइएगा, वी आर नॉट सेइंग दैट, बट प्लीज पढ़िए समझिए। यस, माइक ऑन है।
भगवान का कहना है कि आप अच्छे कर्म करो तो वही मेरी पूजा है।
कहाँ कहाँ भगवान ने ऐसा
सुना है हम लोगों ने?
लेकिन भगवान ने कहा नहीं, सुनने को तो बहुत कुछ सुन सकते हैं।
और ये भी सुना है कि मतलब माता पिता जी अपने भगवान है, शुरू से हम लोगों को सिखाया गया जैसे वो अपने भगवान।
देखिए अभी हमें भक्ति करनी है, भक्ति एक विज्ञान है, ठीक है। विज्ञान जो है तथ्य के आधार पर किया जाता है, सुनी सुनाई बात से नहीं होता। अगर मुझे फिजिक्स का एग्जाम लिखना है और मैं इक्वेशन जो है किसी सुनी सुनाई के आधार पर इक्वेशन लिख दूंगा तो मुझे फेल हो जाऊंगा ना।
नहीं, मेरा ये कहना था मतलब जैसे हम लोग छोटे रहते हैं तो जो घर में हम लोग देखते हैं वही सीखते आते हैं, वही जो हमें बताया जाता है तो हम लोग वही करते हैं। तो मेरा कहना ये कि मतलब ये क्या है कि मतलब अच्छे कर्म कर हमारी वजह से किसी का नुकसान हो तो भगवान की भक्ति है।
लेकिन अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आप सही में जानना चाहते हैं कि भगवान क्या कहते हैं, सच्चाई क्या है, तो क्या अच्छा है, सुनी सुनाई बातें या शास्त्र? तो अभी आप फिर शास्त्र को जानिए कि शास्त्र में क्या बताया है, अच्छा कर्म क्या है, भगवान भक्ति क्या है, ये सब चीज़ों को आप जानिए। करेक्ट? तो आप आइए रेगुलरली।
हरे कृष्ण जी, मैं ये पढ़ा था कि जो ईश्वर है उसका कोई आकार नहीं है, निराकार, तो क्या ये बात करते हैं?
गलत है। भगवान की जो शक्तियां हैं वो निराकार हैं, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद विग्रह। अभी ये भगवद गीता सुना रहे हैं कृष्ण, आकार है तभी तो सुना पा रहे हैं, मुंह है, सोचते हैं, बोलते हैं, यानी कि ये व्यक्ति है ना, तभी तो सुना रहे हैं। तो अब यही जो सुना रहे हैं भगवद गीता, यही कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं सभी चीज का उद्गम हूँ, उसे ही भगवान कहते हैं। भगवान की परिभाषा क्या है? जो सभी चीज के आदि हैं। और श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो कह रहे हैं यानी कि जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं मैं ही सब चीज का उद्गम हूँ, तो इसका मतलब श्री कृष्ण भगवान हैं और श्री कृष्ण तो व्यक्ति हैं। फिर भगवान बताते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, ये जो निराकार ब्रह्म है ये मेरे शरीर से निकलने वाला प्रकाश है। तो वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है कि अंततः भगवान निराकार है। निराकार जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान का एक कांति है, उनके शरीर की कांति है, लेकिन भगवान का तो सच्चिदानंद में स्वरूप है जिसके द्वारा हम भगवान की जिसके हम सेवा करते हैं नित्य रूप से। हरे कृष्ण।
इसका हमारे पास एक ही विकल्प है, इसमें तो कोई मुझे डाउट नहीं है कि मतलब जो सर्वोच्च स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए जिसे आपने बताया कि हमारे पास एक ही विकल्प है कृष्ण भक्ति
जी।
तो लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे साथ के लोग हैं हम तो वही करेंगे जो यहाँ पर बताया जा रहा है
जी,
लेकिन जो हमारे साथ के लोग हैं कई बार जो है वो दूसरे वैकल्पिक मार्गों का अनुसरण कर रहे होते
जी।
तो हमें जो भक्ति करनी चाहिए तो उसके निर्देश करके उनसे करनी चाहिए, या कहीं कहीं जो है हमें प्रयास करना चाहिए कि वो लोग भी जो है इस तत्व को समझे, कृष्ण तत्व को समझे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस चीज़ को महसूस करें कि हमारे पास एक तत्व है।
बिल्कुल, भगवान कहते हैं मेरे इस संदेश को जो दूसरों को देता है उससे प्रिय मुझे और कोई नहीं है। तो एक घर के मुखिया होने के नाते आपका ये परम कर्तव्य है कि आप पे जो आश्रित हैं उनको आप भगवान के इस संदेश के प्रति कन्विंस कराने का प्रयास करें। लेकिन निश्चित रूप से भक्ति तो ज़बरदस्ती नहीं होगी, लेकिन उनको समझाने का प्रयास करना वो हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो वो सही नहीं है। तो डेफिनेटली प्रचार करना, अपने प्रचार, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो उसी प्रकार से हमें प्रचार करना है तो प्रचार शुरू होना चाहिए हमारे घर के अंदर से, हमारे घर के सदस्य से, और फिर नेबर और लोगों को बढ़ना चाहिए, और फिर वो घर वैकुंठ हो जाएगा जहाँ पर सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं कृष्ण को शरणागत हैं। वो फिर वो भौतिक जगत का घर नहीं रह जाएगा, वो तो वैकुंठ हो जाएगा, कृष्ण परिवार हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.